ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियाँ शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें।
अब सुनिए ज्ञान योग का अगला अध्याय, ब्रह्म एवं जगत। 1896 में लंदन में दिया गया स्वामी विवेकानंद का व्याख्यान। अद्वैत वेदांत की इस एक बात की धारणा करना अत्यंत कठिन है कि जो ब्रह्म अनंत है वो शांत अथवा ससीम किस प्रकार हुआ। यह प्रश्न मनुष्य सर्वदा करता रहेगा, पर जीवन भर इस प्रश्न पर विचार करने पर भी उसके हृदय से यह प्रश्न कभी दूर न होगा और वो बारंबार पूछेगा, जो असीम है वो सीमित कैसे हुआ। मैं अब इसी प्रश्न को लेकर आलोचना करूंगा। इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए मैं एक चित्र की सहायता लूंगा। इस चित्र में क है ब्रह्म और ख है जगत और ग है देश काल निमित्त रूपी कांच। यहां पर जगत शब्द से केवल जड़ जगत ही नहीं किंतु सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक जगत, स्वर्ग नरक और वास्तव में कुछ भी नहीं, सबको इसके अंतर्गत लेना होगा। मन एक प्रकार के परिणाम का नाम है, शरीर एक दूसरे प्रकार के परिणाम का, इत्यादि इत्यादि। इन सब को लेकर अपना ये जगत निर्मित हुआ है। ये ब्रह्म का देश काल निमित्त ग में से होकर आने से जगत ख बन गया है। यही अद्वैतवाद की मूल बात है। हम देश काल निमित्त रूपी कांच में से ब्रह्म को देख रहे हैं और इस प्रकार नीचे की ओर से देखने पर ब्रह्म हमें जगत के रूप में दिखता है। इससे ये स्पष्ट है कि जहाँ ब्रह्म है वहाँ देश काल निमित्त नहीं है। काल वहाँ नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ न मन है न विचार। देश भी वहाँ नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ कोई बाह्य परिणाम नहीं। जहाँ सत्ता केवल एक है वहाँ गति एवं निमित्त अथवा कार्यकरण भाव भी नहीं रह सकता। ये बात समझना और इसकी अच्छी तरह धारणा कर लेना हमारे लिए अत्यावश्यक है कि जिसको हम कार्यकरण भाव कहते हैं वो तो यदि हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकें ब्रह्म के प्रपंच के रूप में अवनत होने के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं। और हमारी इच्छा वासना आदि जो कुछ है वे सब उसके बाद ही आरंभ होते हैं। मेरी राय में शोपेनहावर ने अपने दर्शन में वेदांत की व्याख्या करते समय यहीं पर भूल की और उन्होंने इस इच्छा विल को ही सर्वस्व मान लिया। वे ब्रह्म के स्थान में इस इच्छा को ही बैठाना चाहते हैं, किंतु पूर्ण ब्रह्म को कभी इच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इच्छा जगत प्रपंच के अंतर्गत है और इसलिए परिणामशील है। पर ब्रह्म में ख के ऊपर अथवा देश काल निमित्त के ऊपर किसी प्रकार की गति नहीं है, किसी प्रकार का परिणाम नहीं है। इस ग के नीचे ही गति है। बाह्य और अभ्यंतर सभी प्रकार की गति का आरंभ इसके नीचे ही होता है और इस अभ्यांतरिक गति को ही विचार कहते हैं। अतः ख के ऊपर किसी प्रकार की इच्छा रह नहीं सकती, अथवा इच्छा जगत का कारण नहीं हो सकती। और भी निकट आकर देखो, हमारे शरीर की सभी गतियां इच्छा से प्रेरित नहीं होती। मैं इस कुर्सी को उठाता हूँ, यहाँ पर आवश्यक इच्छा ही उठाने का कारण है। ये इच्छा ही पेशों की शक्ति के रूप में परिणत हो गई है, ये बात ठीक है। पर जो शक्ति कुर्सी उठाने का कारण है वही तो फेफड़ों को भी चला रही है, पर इच्छा के रूप में नहीं। इन दोनों शक्तियों को एक मान लेने पर भी जिस समय वो चेतना की भूमि में आती है उसी समय इच्छा कहलाती है, पर इस भूमि में आरोहण करने के पहले उसे इच्छा नाम से पुकारना भूल होगी। इसी से शोपेनहावर के दर्शन में बड़ी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। एक पत्थर गिरा और हमने प्रश्न किया, इसके गिरने का क्या कारण है। यह प्रश्न केवल तभी किया जा सकता है जब ये मान लिया जाए कि बिना कारण के कुछ घटित नहीं होता। मेरा अनुरोध है कि इस धारणा को तुम अपने मन में खूब स्पष्ट देखो, क्योंकि जब ये प्रश्न करते हैं कि ये घटना क्यों हुई, तब हम ये मान लेते हैं कि सभी वस्तुओं का, सभी घटनाओं का एक क्यों रहता ही है, अर्थात उसके घटने के पहले और कुछ अवश्य हुआ होगा जिसने कारण का कार्य किया। इस पूर्ववर्तीता और परवर्तीता के अनुक्रम को ही निमित्त अथवा कार्यकरण भाव कहते हैं। जो कुछ हम देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, संक्षेप में जगत का सभी कुछ एक बार कारण बनता है और फिर कार्य। एक वस्तु अपने बाद आने वाली वस्तु का कारण बनती है और वो स्वयं अपनी पूर्ववर्ती किसी अन्य वस्तु का कार्य भी है। इसी को कार्यकरण का नियम कहते हैं और ये हमारी समस्त विचार प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। ये हमारा स्थिर विश्वास है कि जगत का प्रत्येक अणु, वो फिर चाहे जो हो, अन्य सभी अणुओं के साथ संबद्ध है। हमारी ये धारणा किस प्रकार आई, इस बात को लेकर बहुत वाद विवाद हो चुके हैं। यूरोप में अनेक अतीन्द्रियवादी इंट्यूटिव दार्शनिक हैं, जिनका विश्वास है कि ये धारणा मानव जाति के स्वभाव में है और बहुतों का विचार है कि वो अनुभव जनित है, पर इस प्रश्न का समाधान अभी तक नहीं हो सका। वेदांत इसका क्या समाधान करता है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमें ये समझना है कि ये क्यों का प्रश्न ही इस धारणा पर निर्भर रहता है कि इसके पूर्व कुछ हो चुका है और इसके बाद भी कुछ होगा। इस प्रश्न में दूसरा ये विश्वास निहित है कि जगत का कोई भी पदार्थ स्वतंत्र नहीं, प्रत्येक पदार्थ पर उसके बाहर स्थित अन्य कोई भी पदार्थ कार्य कर सकता है। अन्यानुशयता अथवा परस्पर सापेक्षता समस्त विश्व का नियम है। जब हम पूछते हैं ब्रह्म पर किस प्रकार ने कार्य किया, तो हम कितनी बड़ी भूल करते हैं। ये प्रश्न करने का अर्थ है कि ब्रह्म भी अन्य किसी के अधीन है, वो निरपेक्ष ब्रह्म सत्ता भी अन्य किसी के द्वारा बद्ध है। अथवा ब्रह्म अथवा निरपेक्ष सत्ता शब्द को हम जगत के समान समझते हैं, हम उसे जगत के स्तर पर नीचे खींच लाते हैं। ब्रह्म में देश काल निमित है ही नहीं, क्योंकि वो एक मेवा द्वितीय है, अपनी सत्ता का जो स्वयं ही आधार है, उसका कोई कारण हो ही नहीं सकता। जो मुक्त स्वभाव है, स्वतंत्र है, उसका कोई कारण नहीं हो सकता, अन्यथा वो मुक्त नहीं रहेगा, बद्ध हो जाएगा। जिसमें सापेक्ष भाव है, वो कभी मुक्त स्वभाव नहीं हो सकता। अतः हम देखते हैं कि अनंत शांत कैसे हुआ, ये प्रश्न ही भ्रमात्मक और स्वविरोधी है। इन बारीकियों से उतरकर अपने सामान्य स्तर पर भी जब हम ये जानना चाहते हैं कि निरपेक्ष सापेक्ष कैसे हुआ, इस प्रश्न को एक दूसरे ढंग से देखा जा सकता है। मान लो कि हमने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया, तब क्या निरपेक्ष निरपेक्ष रह जाएगा? ऐसा होने पर तो वो सापेक्ष हो जाएगा। साधारण रूप से हम ज्ञान किसे कहते हैं? जो कोई विषय हमारे मन के विषयभूत हो जाता है, अर्थात मन के द्वारा सीमाबद्ध हो जाता है, हम उसी को जान सकते हैं। और जब वो हमारे मन के बाहर रहता है, अर्थात मन का विषय नहीं रहता, तब उसे नहीं जान सकते। अतः ये स्पष्ट है कि यदि ये ब्रह्म मन के द्वारा सीमाबद्ध हो गया, तो फिर वो निरपेक्ष नहीं रह जाएगा, वो सापेक्ष हो जाएगा। मन के द्वारा जो कुछ सीमाबद्ध है, वो सभी ससीम है, अथवा ब्रह्म को जानना ये बात भी स्वविरोधी ही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला, क्योंकि यदि उत्तर मिल जाए तो वो ब्रह्म नहीं रहेगा। यदि ईश्वर ज्ञात हो जाए तो उसका ईश्वरत्व फिर नहीं रहेगा, वो हमारे ही समान एक व्यक्ति हो जाएगा, उसको जाना नहीं जा सकता, वो सर्वदा ही अज्ञेय है। पर अद्वैतवादी कहते हैं कि ईश्वर केवल वे से अधिक कुछ और भी है। अब हमें इस बात को समझ लेना होगा। तुम अज्ञेयवादियों के समान ये धारणा न बना लो कि ईश्वर अज्ञेय है। दृष्टांत स्वरूप देखो, सामने ये कुर्सी है जिसे मैं जानता हूँ, ये मेरा ज्ञात पदार्थ है, और आकाश तत्व के परे क्या है, वहाँ लोग रहते हैं या नहीं, ये बात शायद बिल्कुल अज्ञेय है। पर ईश्वर इन दोनों विषयों की भांति ज्ञात और अज्ञेय रहने का बस यही तात्पर्य है, उसका वो अर्थ नहीं जिस अर्थ में लोग कुछ प्रश्नों को अज्ञात या अज्ञेय कहते हैं। ईश्वर ज्ञान से और भी कुछ अधिक है, क्योंकि पहले उसे जानकर उसी के माध्यम से हमें कुर्सी का ज्ञान प्राप्त करना होता है। वो साक्षी स्वरूप है, समस्त ज्ञान का वो शाश्वत साक्षी स्वरूप है। हम जो कुछ जानते हैं वो सब पहले उसे जानकर उसी के माध्यम से जानते हैं। वही हमारी आत्मा का सार सत्ता स्वरूप है, वही वास्तविक अहम है, और वो अहम ही हमारे इस अहम का सार सत्ता स्वरूप है। हम उस अहम के माध्यम से जाने बिना कुछ भी नहीं जान सकते, अथवा सभी कुछ हमें ब्रह्म के माध्यम से ही जानना होगा। इस प्रकार ब्रह्म कुर्सी की अपेक्षा हमारे अधिक निकट है, पर तो भी वो हमसे बहुत दूर है। वो ज्ञात भी नहीं, अज्ञात भी नहीं, पर दोनों की अपेक्षा अनंत गुना ऊंचा है। वो तुम्हारी आत्मा है। कौन इस जगत में एक क्षण भी जीवन धारण कर सकता, एक क्षण भी सांस ले सकता, यदि वो आनंद स्वरूप इसमें रम ना रहा होता? कारण उसी की शक्ति से हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, उसी के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। ऐसी बात नहीं कि वो कोई एक स्थान पर बैठकर हमारा रक्त संचालन कर रहा है। तात्पर्य यह है कि वही समुदाय जगत का सत्ता स्वरूप है, हमारी आत्मा की आत्मा है। तुम किसी प्रकार ये नहीं कह सकते कि तुम उसे जानते हो, क्योंकि तब तो उसे बहुत नीचे गिराना हो जाता है। तुम अपने से बाहर नहीं जा सकते, अथवा उसे जान भी नहीं सकते। ज्ञान शब्द का अर्थ है विषयकरण, ऑब्जेक्टिफिकेशन, वस्तु को बाहर लाकर विषय की भ्रांति ज्ञेय वस्तु की भांति प्रत्यक्ष करना। उदाहरण स्वरूप देखो, स्मरण करने में तुम बहुत सी वस्तुओं को विषयकृत करते हो, मानो उसको तुम अपने भीतर से बाहर प्रक्षिप्त करते हो। सभी प्रकार की स्मृति, जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मैं जानता हूँ, सभी मेरे मन में अवस्थित है। इन सभी वस्तुओं की छाप या चित्र मेरे भीतर मौजूद है। जब मैं उनके विषय में सोचने की इच्छा करता हूँ, उसको जानना चाहता हूँ, तो पहले इन सब को मानो बाहर प्रक्षिप्त करना पड़ता है। ईश्वर के संबंध में ऐसा करना असंभव है, क्योंकि वो हमारी आत्मा की आत्मा है। हम उसे बाहर प्रक्षिप्त नहीं कर सकते। इस संबंध में वेदांत का एक अनंतम वचन है। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, स य ऐशोणी मैत तात्म्य मिदम सर्व तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु, जिसका अर्थ है वो सार स्वरूप जगत का कारण है, सकल वस्तुओं की आत्मा है, वही सत्य स्वरूप है। हे श्वेत केतु, वही तू है, तत्त्वमसि तू ईश्वर है का अर्थ यही है। इसके अतिरिक्त और किसी भी भाषा द्वारा तुम ईश्वर का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान को माता पिता भाई या प्रिय मित्र कहने से उसको विषयकृत करना पड़ता है, उसको बाहर लाकर देखना पड़ता है, पर ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो तो सब विषयों का अनंत विषयी है। जिस प्रकार मैं जब इस कुर्सी को देखता हूँ, तो मैं कुर्सी का दृष्टा हूँ, मैं इसका विषय हूँ। उसी प्रकार ईश्वर मेरी आत्मा का नित्य दृष्टा है, नित्य ज्ञाता है, नित्य विषयी है। किस प्रकार तुम उसको अपनी आत्मा की अंतरात्मा को सब वस्तुओं की सार सत्ता को विषयकृत करोगे? इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि ईश्वर ज्ञेय भी नहीं और अज्ञेय भी नहीं, वो इन दोनों से अनंत गुना ऊंचा है। वो हमारे साथ अभिन्न है, और जो हमारे साथ एक है वो हमारे लिए न ज्ञेय हो सकता है न अज्ञेय, जैसा कि हमारी अपनी आत्मा। तुम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, तुम उसे बाहर नहीं ला सकते, और न ही उसे विषय के रूप में दृष्टिगोचर कर सकते हो, क्योंकि तुम स्वयं वही हो। तुम अपने को उससे पृथक नहीं कर सकते, तुम उसको अज्ञेय भी नहीं कह सकते, क्योंकि अज्ञेय कहने से भी पहले उसे विषय बनाना पड़ेगा, और ये नहीं हो सकता। तुम अपने निकट स्वयं जितने परिचित या ज्ञात हो, उससे अधिक कौन सी वस्तु तुमको ज्ञात है? वास्तव में वो हमारे ज्ञान का केंद्र है। ठीक इसी अर्थ में ये कहा जाता है कि ईश्वर ज्ञात भी नहीं है और अज्ञात भी नहीं, वो इन दोनों की अपेक्षा अनंत गुना ऊंचा है, क्योंकि वही हमारी यथार्थ आत्मा है। एतवा हमने देखा कि पहले तो ये प्रश्न ही स्वविरोधी है कि पूर्ण ब्रह्म सत्ता से जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, और दूसरे हम देखते हैं कि अद्वैतवाद में ईश्वर की धारणा इसी एकत्व की धारणा है, अतः हम उसको विषयकृत नहीं कर सकते, क्योंकि जाने अनजाने हम सदैव उसी में जीवित हैं और उसी में रहकर समस्त कार्यकलाप करते हैं। हम जो कुछ करते हैं सब उसके भीतर से ही करते हैं। अब प्रश्न यह है कि देश काल निमित्त क्या है। अद्वैतवाद का मर्म तो यह है कि वस्तु एक ही है दो नहीं, पर यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि वो अनंत ब्रह्म देश काल निमित्त के अनावरण में से नाना रूपों में प्रकाशित हो रहा है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दो वस्तुएं हैं, एक तो वो अनंत ब्रह्म और दूसरी देश काल निमित्त की समष्टि अर्थात माया। ऊपर से तो यही प्रतीत होता है कि ये दो वस्तुएं हैं। अद्वैतवादी इसका उत्तर देते हैं कि वास्तव में इस प्रकार दो नहीं हो सकते। यदि दो वस्तुएं माने तो ब्रह्म की भांति जिस पर कोई निमित्त कार्य नहीं कर सकता, दो स्वतंत्र सत्ताएं माननी पड़ेंगी। पहले तो यही नहीं कहा जा सकता कि काल देश और निमित्त स्वतंत्र सत्ताएं हैं। हमारे मन के प्रत्येक परिवर्तन के साथ काल का भी परिवर्तन होता रहता है, अतः उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कभी कभी हम स्वप्न में देखते हैं कि हम कई वर्ष जीवित हैं, और कभी कभी ऐसा बोध होता है कि कई मास एक ही क्षण में गुजर गए। अथवा काल हमारे मन की अवस्था पर ही निर्भर है। दूसरे काल का ज्ञान कभी कभी बिल्कुल लुप्त हो जाता है। देश के संबंध में यही बात है। हम देश का स्वरूप नहीं जान सकते, उसका कोई निर्दिष्ट लक्षण करना असंभव होने पर भी वो है, इस बात को अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। फिर वो अन्य किसी पदार्थ से पृथक होकर नहीं रह सकता। निमित्त अथवा कार्यकरण भाव के संबंध में भी यही बात है। इस देश काल और निमित्त में हम एक विशेषता ये देखते हैं कि ये अन्यायन वस्तुओं से पृथक होकर नहीं रह सकते। तुम शुद्ध देश की कल्पना करो जिसमें ना कोई रंग है, न सीमा और न चारों ओर की किसी भी वस्तु से कोई संसर्ग है, तो तुम देखोगे कि तुम इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। देश संबंधी विचार करते ही तुमको दो सीमाओं के बीच अथवा तीन वस्तुओं के बीच स्थित देश की कल्पना करनी होगी। अतः हमने देखा कि देश का अस्तित्व अन्य किसी वस्तु पर निर्भर रहता है। काल के संबंध में भी यही बात है। शुद्ध काल के संबंध में तुम कोई धारणा नहीं कर सकते। काल की धारणा करने के लिए तुमको एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती घटना लेनी पड़ेगी, और अनुक्रम की धारणा के द्वारा उन दोनों को मिलाना होगा। जिस प्रकार देश बाहर की दो वस्तुओं पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार काल की दो घटनाओं पर निर्भर रहता है, और निमित्त अथवा कार्यकरण भाव की धारणा इस देश और काल पर निर्भर रहती है। देश काल निमित्त के भीतर विशेषता यही है कि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस कुर्सी अथवा इस दीवार का जैसा अस्तित्व है, उनका वैसा भी नहीं। वे जैसे सभी वस्तुओं के पीछे लगी हुई छाया के समान हैं। तुम किसी भी प्रकार उन्हें पकड़ नहीं सकते, उनकी कोई सत्ता नहीं है। हम देख चुके हैं कि सचमुच उनका अस्तित्व ही नहीं है। अधिक से अधिक ये छाया के समान है, फिर वे कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हीं में से जगत का प्रकाश हो रहा है। वे तीनों मानो स्वभावतः मिलकर नाना रूपों की उत्पत्ति कर रहे हैं। अथवा पहले हमने देखा कि देश काल निमित्त की समष्टि का अस्तित्व भी नहीं है, फिर वे बिल्कुल असत अस्तित्व शून्य भी नहीं है। दूसरे ये कभी कभी बिल्कुल अंतर्निहित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ समुद्र की तरंगों को ले लो। तरंग अवश्य समुद्र के साथ अभिन्न है, फिर भी हम उसको तरंग कहके समुद्र से पृथक रूप में जानते हैं। इस विभिन्नता का कारण क्या है? नाम और रूप। नाम अर्थात उस वस्तु के संबंध में हमारे मन में जो एक धारणा रहती है वो, और रूप अर्थात आकार। पर क्या हम तरंग को समुद्र से बिल्कुल पृथक रूप में सोच सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। वो तो सदैव इस समुद्र की धारणा पर ही निर्भर रहती है। यदि ये तरंग चली जाए तो रूप भी अंतर्निहित हो जाएगा। फिर भी ऐसी बात नहीं कि ये रूप बिल्कुल भ्रमात्मक था। जब तक ये तरंग थी तब तक ये रूप भी था और तुमको बाध्य होकर ये रूप दिखना पड़ता था। यही माया है। अथवा ये संपूर्ण जगत मानो उस ब्रह्म का एक विशेष रूप है। ब्रह्म ही वो समुद्र है और तुम और मैं, सूर्य, तारे, सभी उस समुद्र में विभिन्न तरंग मात्र है। तरंगों को समुद्र से पृथक कौन करता है? ये रूप, और ये रूप है केवल देश काल निमित्त। ये देश काल निमित्त भी संपूर्ण रूप से इन तरंगों पर निर्भर रहते हैं। जो ही तरंगे चली जाती हैं त्यों ही ये भी अंतर्निहित हो जाते हैं। जीवात्मा त्यों ही इस माया का परित्याग कर देता है, त्यों ही वो उसके लिए अंतर्निहित हो जाती है और वो मुक्त हो जाता है। हमारी सारी चेष्टाएं इस देश का निमित्त के चंगुल से बाहर होने के लिए होनी चाहिए। ये सर्वदा हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा डालते रहते हैं। क्रम विकासवाद क्या है? इसके दो अवयव हैं। एक है प्रबल अंतर्निहित शक्ति जो अपने को प्रकट करने की चेष्टा कर रही है, और दूसरा है बाहर की परिस्थितियां जो उसे अवरुद्ध किए हुए है, परिवेश जो उसे व्यक्त नहीं होने देता। अतः इन परिस्थितियों से युद्ध करने के लिए ये शक्ति नए नए शरीर धारण कर रही है। एक अमीबा इस संघर्ष में एक और शरीर धारण करता है और कुछ बाधाओं पर जय लाभ करता है, और इस प्रकार भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हुए अंत में मनुष्य रूप में परिणत हो जाता है। अब यदि इसी तत्व को उसके स्वाभाविक चरम सिद्धांत पर ले जाया जाए तो ये अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि एक समय ऐसा आएगा जब अमीबा के भीतर क्रीड़ा करने वाली शक्ति जो अंत में मनुष्य रूप में परिणत हो गई, प्रकृति द्वारा प्रस्तुत सारी बाधाओं को पार कर जाएगी और अपने समस्त परिवेश को पार कर लेगी। इसी बात को दार्शनिक भाषा में इस प्रकार कहना होगा, प्रत्येक कार्य के दो अंश होते हैं, एक विषयी और दूसरा विषय, और जीवन का लक्ष्य है विषयी को विषय का स्वामी बनाना। मान लो एक व्यक्ति ने तेरा तिरस्कार किया और मैंने अपने को दुखी अनुभव किया, तो मेरी चेष्टा अपने मन को इतना सबल बना लेने की होगी जिसमें परिस्थितियों पर मैं विजय प्राप्त कर लूं, जिससे अपना तिरस्कार होने पर भी मैं किसी कष्ट का अनुभव ना करूं। बस इसी प्रकार हम विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। नैतिकता का क्या अर्थ है? विषय को ब्रह्म से समसूरित करके दृढ़ बनाना, जिससे ससीम प्रकृति का अधिकार हम पर ना चल सके। हमारे दर्शन का ये तर्कसंगत निष्कर्ष है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि प्रकृति सीमित है। हमें एक बात और समझनी होगी, हम कैसे जानते हैं कि प्रकृति ससीम है? दर्शन के द्वारा। प्रकृति उस अनंत का ही सीमाबद्ध भाव मात्र है, अतः वो सीमित है। अथवा एक समय ऐसा आएगा जब हम बाहर की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उसको पराजित करने का उपाय क्या है? हम समस्त बाह्य परिवेश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ये असंभव है। छोटी मछली जल में रहने वाले अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करना चाहती है। वो किस प्रकार ये कार्य करती है? पंख विकसित करके पक्षी बनाकर। मछली ने जल अथवा वायु में कोई परिवर्तन नहीं किया, जो कुछ परिवर्तन हुआ वो उसके अपने ही अंदर हुआ। परिवर्तन सदा अपने ही अंदर होता है। समस्त क्रम विकास में तुम सर्वत्र देखते हो कि प्राणी में परिवर्तन होने से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है। इस तत्व का प्रयोग धर्म और नीति में करो तो देखोगे यहाँ भी अशुभ पर जय अपने भीतर परिवर्तन के द्वारा ही साधित होती है। सब कुछ अपने ऊपर निर्भर रहता है। इस अपने पर जोर देना ही अद्वैतवाद की वास्तविक दृढ़ भूमि है। अशुभ दुख की बात करना ही भूल है, क्योंकि बहिर्जगत में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन सब घटनाओं में स्थिर भाव से रहने का यदि मुझे अभ्यास हो जाए, फिर क्रोधोत्पादक सैकड़ों कारण सामने आने पर भी उसमें क्रोध का उद्रेक ना होगा। इसी प्रकार लोग मुझसे चाहे जितनी घृणा करें, पर यदि मैं उससे प्रभावित ना हूं तो मुझमें उनके प्रति घृणा भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। इस विजय को प्राप्त करने की प्रक्रिया यही है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को ही पूर्ण बनाना। अथवा मैं ये कहने का साहस कर सकता हूँ कि अद्वैतवाद ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दिशाओं में केवल मेल ही नहीं खाता, वरन उनसे भी आगे जाता है, और इसी कारण वो आधुनिक वैज्ञानिकों को इतना भाता है। वे देखते हैं कि प्राचीन द्वैतवादी धर्म उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उनसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। मनुष्य को केवल श्रद्धा नहीं चाहिए, बुद्धिनिष्ठ श्रद्धा भी चाहिए। अब इस 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी इस प्रकार की धारणा है कि हमारे बाप दादाओं से आया हुआ धर्म ही एकमात्र सत्य है, और अन्य स्थानों में जिन सब दूसरे धर्मों का प्रचार हो रहा है वे सभी मिथ्या है। इससे यही प्रमाणित होता है कि हमारे भीतर अभी भी दुर्बलताएं हैं, हमें ये दुर्बलताएं दूर करनी होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये दुर्बलता केवल इसी देश में इंग्लैंड में है, नहीं, ये सभी देशों में है, और जैसी मेरे देश में है वैसी तो कहीं भी नहीं। वहाँ ये बहुत ही भयानक रूप से है। वहाँ अद्वैतवाद का प्रचार साधारण लोगों में कभी होने नहीं दिया गया। सन्यासी लोग ही अरण्य में उसकी साधना करते थे, इसी कारण वेदांत का एक नाम अरण्यक भी हो गया। अंत में भगवान के कृपा से बुद्ध देव ने आकर सर्वसाधारण के बीच इसका प्रचार किया और सारा देश बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। फिर बहुत समय बाद जब निरीश्वरवादियों और अज्ञेयवादियों ने देश को ध्वंस करने की चेष्टा की, इस जड़वाद से भारत की परित्राण करने में अद्वैत फिर एकमात्र उपाय सिद्ध हुआ। इस प्रकार दो बार इसने जड़वाद से भारत की रक्षा की है। पहले बुद्धदेव आने के पूर्व नास्तिकता अति प्रबल हो उठी थी। यूरोप अमेरिका के विद्वानों में आजकल जैसी नास्तिकता है वैसी नहीं, वरन वो तो इससे भी भयानक थी। मैं एक प्रकार का जड़वादी हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि केवल एक ही वस्तु का अस्तित्व है। आधुनिक वैज्ञानिक जड़वादी भी यही कहते हैं, पर वे उसे जड़ के नाम से पुकारते हैं और मैं उसे ब्रह्म कहता हूँ। ये जड़वादी कहते हैं कि इस जड़ से ही समस्त आशा धर्म तथा सभी कुछ प्रसूत हुआ है, और मैं कहता हूँ ब्रह्म से ही सब कुछ हुआ है। पर बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व का जड़वाद असंस्कृत प्रकार का था जो शिक्षा देता था, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ईश्वर आत्मा या स्वर्ग कुछ भी नहीं, धर्म कुछ धूर्त दुष्ट पुरोहितों की कपूल कल्पना मात्र है। या वज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीपते। और नास्तिकता उस समय इतनी बढ़ गई थी कि उसका नाम ही हो गया लोकायत दर्शन। ऐसी अवस्था में बुद्धदेव ने आकर वेदांत को प्रकाशित किया और उसका जन साधारण में प्रचार करके भारतवर्ष की रक्षा की। बुद्धदेव के तिरोभाव के ठीक 1000 वर्ष पश्चात फिर उसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई। भीड़ की भीड़ जनसाधारण तथा अनेक जातियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, अतः जनता के घोर अज्ञानी होने के कारण बौद्ध धर्म का अपक्षय होना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म किसी ईश्वर या जगत के शासक का उपदेश नहीं करता, अतः जनसाधारण शने शने अपने देवी देवता भूत प्रेत पुनः ले आए और अंत में भारतवर्ष में बौद्ध धर्म नाना प्रकार के विषयों की खिचड़ी सा हो गया। तब फिर से भौतिकता के बादलों से भारत का आकाश ढक गया। अच्छे परिवार के लोग स्वेच्छाचारी और साधारण लोग अंधविश्वासी हो गए। ऐसे समय में शंकराचार्य ने उठकर फिर से वेदांत की ज्योति को जगाया। उन्होंने उसका एक युक्तिसंगत विचारपूर्ण दर्शन के रूप में प्रचार किया। उपनिषदों में विचार भाग बड़ा ही अस्फुट था। बुद्ध देव ने उपनिषदों के नीति भाग पर विशेष बल दिया था, शंकराचार्य ने उनके ज्ञान भाग पर अधिक जोर दिया। उन्होंने उपनिषदों के सिद्धांत युक्ति और विचार की कसौटी पर कसकर प्रणालीबद्ध रूप में लोगों के समक्ष रखे। यूरोप में आजकल जड़वाद की पताका फहरा रही है। इन संदेहवादियों के उद्धार के लिए भले ही तुम प्रार्थना करो, पर यह विश्वास नहीं करने के, वे चाहते हैं युक्ति। यूरोप का उद्धार एक बुद्धिनिष्ठ धर्म पर निर्भर है और द्वैता रहित एकत्व प्रधान निर्गुण ईश्वर का प्रतिपादन करने वाला ये अद्वैतवाद ही एक ऐसा धर्म है जो जो किसी बौद्धिक जाति को संतुष्ट कर सकता है। जब कभी धर्म लुप्त होने लगता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तभी इसका आविर्भाव होता है। इसलिए यूरोप और अमेरिका में प्रवेश प्राप्त कर ये दृढ़पूर्ण होता जा रहा है। इस दर्शन के संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। प्राचीन उपनिषदों में हमें उदात्त काव्य मिलता है। उनके रचयिता कवि थे। प्लेटो ने कहा है, कविता के द्वारा अंतःस्फुरण प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कविता के माध्यम से उच्चतम सत्यों को साक्षात कराने के लिए ही मानव विधाता ने सत्य दृष्टा इन प्राचीन ऋषियों को मानवता से इतना ऊंचा उठा दिया था। वे न तो प्रचार करते थे, न दार्शनिक उहापोह करते थे और न कभी लिखते ही थे। उनके हृदय निर्झर से संगीत का उद्यम हुआ था। बुद्ध देव में हम पाते हैं हृदय महान विश्वव्यापी हृदय और अनंत धैर्य। उन्होंने धर्म को सर्वसाधारण जनोपयोगी बनाकर प्रचार किया। शंकराचार्य में हम अद्भुत बौद्धिक प्रतिभा पाते हैं। उन्होंने हर विषय पर बुद्धि का प्रखर प्रकाश डाला। आज हमको बुद्धि के इस प्रखर सूर्य के साथ बुद्ध देव का अद्भुत प्रेम और दया युक्त अद्भुत हृदय चाहिए। इसी सम्मेलन में हमें उच्चतम दर्शन की उपलब्धि होगी। विज्ञान और धर्म एक दूसरे का आलिंगन करेंगे। कविता और विज्ञान मित्र हो जाएंगे। यही भविष्य का धर्म होगा। और यदि हम ऐसा ठीक ठाक कर ले सके तो ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि ये सभी काल और सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। यही पथ आधुनिक विज्ञान को ग्राह्य हो सकता है, क्योंकि वो लगभग वहां पहुंच गया है जब विज्ञान का अध्यापक कहता है कि सब कुछ उस एक शक्ति का ही विकास है। तब क्या वो तुमको उपनिषदों में वर्णित उस ब्रह्म की याद नहीं दिलाता? अग्न्यर्थेको भुवम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्था सर्वभूतारा आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत में प्रविष्ट होकर नाना रूपों में प्रकट होती है, उसी प्रकार सारे जीवों की अंतरात्मा वो एक ब्रह्म रूपों में प्रकाशित हो रहा है। फिर वो जगत के बाहर भी है। विज्ञान किस ओर जा रहा है, ये क्या तुम नहीं देखते? हिंदू जाति मनस्तत्व की आलोचना करते करते दर्शन और तर्क के द्वारा आगे बढ़ी थी। यूरोपीय जातियों ने बाह्य प्रकृति से आरंभ किया और अब दोनों एक स्थान पर पहुंच रही हैं। मनस्तत्व में से होकर हम उसी एक अनंत सार्वभौमिक सत्ता में पहुंच रहे हैं, जो सब वस्तुओं की अंतरात्मा है, जो सबका सार और सभी वस्तुओं का सत्य है, जो नित्य मुक्त नित्यानंद और नित्य सत्ता है। बाह्य विज्ञान के द्वारा भी हम उसी एक तत्व पर पहुंच रहे हैं। ये जगत प्रपंच उसी का एक विकास है। जगत में जो कुछ भी है वो उस सबकी समष्टि है और सारी मानव जाति मुक्ति की ओर अग्रसर हो रही है। बंधन की ओर वो कभी भी नहीं जा सकती। मनुष्य नीति परायण क्यों है? इसलिए कि नैतिकता ही मुक्ति का मार्ग है और अनैतिकता बंधन का। अद्वैतवाद की एक और विशेषता यह है कि अद्वैत सिद्धांत अपने आरंभ काल से ही अविध्वंसात्मक रहा है। वो ये प्रचार करने का साहस करता है, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेतः सर्वक कर्मण्ये विद्वान युक्त समाचरण। ज्ञानियों को चाहिए कि वे अज्ञानी कर्म में आसक्त व्यक्तियों में युक्ति भेद उत्पन्न न करें। विद्वान व्यक्ति को स्वयं युक्त रहकर उन लोगों को सब प्रकार के कर्मों में नियुक्त करना चाहिए। अद्वैतवाद यही कहता है, किसी की गति को विचलित मत करो, किंतु सभी को उच्च से उच्चतर मार्ग पर जाने में सहायता दो। अद्वैतवाद जिस ईश्वर का प्रचार करता है वो समस्त जगत का समष्टि स्वरूप है। यदि तुम कोई ऐसा सर्वजननीय धर्म जानते हो तो सबके लिए उपयोग हो तो उसे केवल कुछ विशिष्ट भावों को ही नहीं बल्कि सभी भावों की समष्टि होना चाहिए। धार्मिक विकास के सभी स्तरों को अपने में समाविष्ट करना चाहिए। अन्य किसी धर्म में ये समष्टि का भाव उतना स्पष्ट नहीं है। वे सभी उस समष्टि की ही प्राप्ति की चेष्टा में समान रूप से रत विभिन्न अंश हैं। अंशों का अस्तित्व केवल इसलिए होता है, इसलिए आरंभ से ही अद्वैतवाद का भारतवर्ष के किसी भी संप्रदाय से कोई विरोध नहीं रहा है। भारत में आज अनेक द्वैतवादी हैं, उनकी संख्या भी सर्वाधिक है। इसका कारण यह है कि शिक्षित लोगों को द्वैतवाद स्वभावतः अधिक अच्छा लगता है। द्वैतवादी कहते हैं कि ये द्वैतवाद जगत की एक बिल्कुल स्वाभाविक व्याख्या है, पर इन द्वैतवादियों के साथ अद्वैतवादियों का कोई विवाद नहीं। द्वैतवादी कहते हैं ईश्वर जगत के बाहर है, वह स्वर के बीच एक विशेष स्थान में रहता है, और अद्वैतवादी कहते हैं जगत का ईश्वर हमारा अपना ही अंतरात्मा स्वरूप है, उसे दूरवर्ती कहना ही इश निंदा है, उससे पृथक होने का भाव मन में लाना भी भयानक है, वो तो निकट से निकटतम है, तुम ही वो हो। इस एकत्व सूचक वाक्य को छोड़ किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके द्वारा उसकी ये निकटता व्यक्त की जा सके। जिस प्रकार द्वैतवादी अद्वैतवादियों की बातों से डरते हैं और उसे नास्तिकता कहते हैं, अद्वैतवादी भी उसी प्रकार द्वैतवादियों की बातों से डरते हैं और कहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार उसको ईश्वर को अपने गृह वस्तु के समान सोचने का साहस करता है। ऐसा होने पर भी वे जानते हैं कि इस प्रकार के विचारों का होना अनिवार्य है। द्वैतवादी भी अपने दृष्टिकोण से ठीक ही बात कहते हैं, अतः उनसे उनका कोई विवाद नहीं। जब तक वे समष्टि भाव से ना देखकर व्यष्टि भाव से देखते हैं, तब तक उन्हें अवश्य अनेक देखना पड़ेगा, ये उनके दृष्टिकोण से अनिवार्य ही है। फिर भी अद्वैतवादी जानते हैं कि द्वैतवादियों के मत में चाहे कितनी ही अपूर्णता क्यों न हो, वे सब उसी एक लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। इसी स्थान पर उनका द्वैतवादियों के साथ संपूर्ण प्रभेद है, क्योंकि द्वैतवादी अपने से भिन्न सभी मतों को भ्रांत मानने के लिए विवश है। संसार के सभी द्वैतवादी स्वभावतः एक ऐसे सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं जो एक उच्च शक्ति संपन्न मनुष्य पात्र है और एक लौकिक शासक की भांति कुछ से प्रसन्न तथा कुछ से अप्रसन्न होता है। वो बिना किसी कारण ही किसी जाति या राष्ट्र से प्रसन्न है और उन पर वरदानों की वृष्टि करता रहता है। अतः द्वैतवादी के लिए ये मानना स्वाभाविक हो जाता है कि ईश्वर के कुछ विशेष कृपा पात्र होते हैं और वो उनमें से एक होने की आशा करता है। तुम देखोगे कि सभी धर्मों में ये विचार पाया जाता है, हम ही ईश्वर के प्रिय पात्र हैं, हमारी ही तरह विश्वास करने से हमारा ईश्वर तुम पर कृपा करेगा। और कितने ही द्वैतवादी तो ऐसे हैं जिनका मत और भी भयानक है। वे कहते हैं ईश्वर पूर्ण नियोजित रूप से जिनके प्रति दयालु है केवल उन्हीं का उद्धार होगा और शेष सिर पटक कर मर भी जाए तो भी इस अंतरंग दल में प्रवेश नहीं पा सकते। तुम मुझे एक भी ऐसा द्वैतवादात्मक धर्म बता दो जिसके भीतर ये संकीर्णता ना हो। यही कारण है कि ये सब धर्म सदैव परस्पर युद्ध करते रहेंगे और वे करते भी यही रहे हैं। फिर ये द्वैतवादियों का धर्म सर्वदा लोकप्रिय होता है क्योंकि वो अशिक्षितों को तृप्त करता है। उनको ये सोचना अच्छा लगता है कि कुछ विशेषाधिकार उनके पास हैं जो औरों के पास नहीं है। द्वैतवादी समझते हैं कि उनको मारने के लिए उद्धत एक दंडधारी ईश्वर बिना किसी प्रकार की नैतिकता ठहरी नहीं सकती। विचार करने में असमर्थ साधारण लोग सभी देशों में द्वैतवादी होते हैं। इन बेचारों पर सदा ही अत्याचार होता रहा है, अतः उनकी मुक्ति की धारणा है दंड से छुटकारा पाना। एक बार अमेरिका में एक पादरी ने मुझसे कहा, क्या तुम्हारे धर्म में शैतान नहीं है? ये कैसे? किंतु हम देखते हैं कि सभी देशों के चिंतनशील महापुरुषों ने इस निर्गुण ब्रह्म भाव को लेकर ही कार्य किया है। इस भाव से अनुप्राणिमत होकर ही ईसा मसीह ने कहा है, मैं और मेरे पिता एक हैं। इसी प्रकार का व्यक्ति लाखों व्यक्तियों में शक्ति संचार करने में समर्थ होता है और यह शक्ति सहस्त्रों वर्ष तक मनुष्यों के प्राणों में परित्राण देने वाली शुभ शक्ति का संचार करती है। हम ये भी जानते हैं कि ये महापुरुष अद्वैतवादी थे, इसलिए दूसरों के प्रति दयाशील थे। उन्होंने सर्वसाधारण को हमारा स्वर्गस्थ पिता की शिक्षा दी थी। सगुण ईश्वर से उच्चतर अन्य किसी भाव की धारणा न कर सकने वाले साधारण लोगों को उन्होंने स्वर्ग में रहने वाले पिता से प्रार्थना करने का उपदेश दिया। जो कुछ अधिक सूक्ष्म भाव ग्रहण कर सकते थे उनमें उन्होंने कहा, मैं लता हूँ, तुम शाखाएं हो, किंतु अपने जिन शिष्यों के प्रति उन्होंने अपने स्वरूप को अधिक पूर्णता से प्रकट किया, उनसे उन्होंने सर्वोच्च सत्य की घोषणा की, मैं और मेरे पिता एक है। बुद्ध देव ने द्वितीय देवता ईश्वर आदि की किंचित भी चिंता नहीं की। उनको नास्तिक तथा जड़वादी कहा गया है, पर वे एक साधारण बकरी तक के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे। उन्होंने मानव जाति में सर्वोच्च नैतिकता का प्रचार किया। जहाँ कहीं तुम किसी प्रकार का नीति विधान पाओगे, वही देखोगे कि उनका प्रभाव, उनका प्रकाश जगमगा रहा है। जगत के इन सब विशाल हृदय व्यक्तियों को तुम किसी संकीर्ण दायरे में बांधकर नहीं रख सकते। विशेषता आज जबकि मनुष्य जाति के इतिहास में एक ऐसा समय आ गया है और सब प्रकार के ज्ञान की ऐसी उन्नति हुई है जिसकी किसी ने 100 वर्ष पूर्व स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व जो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान का स्रोत बह चला है। ऐसे समय में क्या लोगों को अब भी इस प्रकार के संकीर्ण भावों में आबद्ध करके रखा जा सकता है? हाँ, लोग यदि बिल्कुल पशु तुल्य विचारहीन जड़ पदार्थ के समान हो जाएं, तो भले ही ये संभव हो। इस समय आवश्यकता है उच्चतम ज्ञान के साथ उच्चतम हृदय की, अनंत ज्ञान के साथ अनंत प्रेम के योग की। अथवा वेदांति कहते हैं, उस अनंत सत्ता के साथ एकीभूत होना ही एकमात्र धर्म है। ये भगवान के बस यही गुण बतलाते हैं, अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। और वे कहते हैं कि ये तीनों एक है। ज्ञान और प्रेम या आनंद के बिना सत्ता कभी रह नहीं सकती। ज्ञान भी बिना आनंद या प्रेम नहीं रह सकता और आनंद भी किसी ज्ञान बिना नहीं रह सकता। हमें अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का समन्वय चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। हमें समन्वय चाहिए, एक पक्षीय विकास नहीं। शंकराचार्य की बुद्धि के साथ बुद्धदेव का हृदय रखना संभव है। मैं आशा करता हूँ कि इस मंगलमय समन्वय की उपलब्धि के निमित्त हम सभी प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।